मेरे प्रिय युवा मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के तहत मैं आप सबसे चार देशों का जो एक नया गठबंधन बनने जा रहा है उस पर कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट खबर है, आपने रेडियो न्यूज़ में भी सुना है, आपने बाकायदे दूरदर्शन के खबरों में भी इसकी पूर्व सूचना हासिल की है, और वह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी आज कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शुभारंभ करेंगे। देखिए, एक छोटी सी खबर है। मैं आपको अब सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चंस के सूत्रों को आप कैसे विस्तार देंगे, इस पर बात करने जा रहा हूं। एक छोटा सा समाचार है और आपको लगेगा कि ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया जा रहा है तो किया जा रहा है, बात खत्म हो गई, क्योंकि बहुत से ऐसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन किए जाते हैं। तो आपके लिए इसमें क्या विशेष, आपके लिए यानी कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले नौजवान के लिए इसमें क्या विशेष बात है? दो तीन विशेष बात है, और मुझे लगता है कि प्री एग्जामिनेशन में इस पर अगर प्रश्न पूछ भी लिए जाते हैं तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए कि इसमें नाम है कुशीनगर, कुशीनगर, राइट? कुशीनगर मतलब गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ स्थान, गौतम बुद्ध के नाम से जुड़ा हुआ स्थान। इसका मतलब यह हुआ कि कुशीनगर के साथ गौतम बुद्ध का क्या संबंध था, यह आपको मालूम होना चाहिए। जब हम यह सोचते हैं कि कुशीनगर के साथ गौतम बुद्ध का क्या संबंध था, तो फिर हमें यह भी देखना पड़ेगा कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यानी कि मतलब विदेश से हम लोगों को आकर्षित करना चाह रहे हैं कि वो कुशीनगर आए, अदरवाइज अपने आप में कोई बड़ा शहर तो है नहीं। तो इसका मतलब है कि हम पर्यटन को अपने यहां बढ़ावा देने के लिए एक बौद्ध सर्किट जैसा बनाना चाह रहे हैं, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो दुनिया के जो दूसरे राष्ट्र हैं वहां के नागरिकों को हम यह सुविधा देने जा रहे हैं कि आप आइए और बौद्ध स्थलों का को तीर्थ समझ करके वहां पहुंचिए, राइट? तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो कुशीनगर एयरपोर्ट है ये दुनिया के किन किन देशों को जोड़ेगा, यानी कि सीधी फ्लाइट होगी। तो सीधी सी बात है कि उन देशों से इसकी कनेक्टिविटी होगी, डायरेक्ट कनेक्टिविटी, जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, जैसे श्रीलंका। आपने न्यूज में ये भी सुना होगा कि श्रीलंका से तो इस समय जब उसका उद्घाटन होगा तो एक विशेष डेलीगेशन आ रहा है बौद्ध धर्म का। तो जहां जहां बौद्ध धर्म का प्रभाव है भारत सीधे उन्हें जोड़ेगा, और अगर दूसरे भी आना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो यहां से जुड़ जाएंगे। अब आप देखिए कि जो कुशीनगर है, अब कुशीनगर एक सेंट्रल स्थान हो गया, यहां पर लोग आ गए। अब यहां से वो दूसरे स्थानों पर जाएंगे, तो वो दूसरे स्थान कौन कौन से होंगे? सीधी सी बात है कि वो भी गौतम बुद्ध से जुड़े हुए ही बहुत प्रमुख नगर होंगे, तो आपको उन्हें भी देख लेना चाहिए कि ऐसे कौन से स्थान हैं। तो आपको पता लगेगा कि एक लुम्बिनी तो चलिए नेपाल में है, जो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान रहा है। फिर बोध गया है, और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि यह स्थान क्यों प्रसिद्ध है। बोध गया बिहार के गया जिले में है, तो बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर सारनाथ है, सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन की शुरुआत कहते हैं। कुशीनगर में आप जानते हैं कि महापरिनिर्वाण उन्हें प्राप्त हुआ था, जीवन की अंतिम सांस उन्होंने वहां ली थी। तो इस तरीके से जो और दूसरे स्थान है, कौशाम्बी है, वहां स्तूप बने हुए हैं, पेशावर है, वहां इस बकायदे स्तूप है जो कनिष्क ने बनवाया था। तो ये जो मैं आपको बातें बताने जा रहा हूं, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैं केवल आपको ये मैसेज दे रहा हूं कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी की रिक्वायरमेंट क्या है। केवल इस यह सुन लेने से या यह पढ़ लेने से बात नहीं बन जाती है कि कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। नहीं, उससे संबंधित जो बातें हैं वो आपको मालूम होनी चाहिए। अब मैं अगर दूसरी बात कहूं कि अगर लखनऊ मान लीजिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन होता है, मैं कल्पना कर रहा हूं, या किसी स्थान का, तो क्या उसके साथ भी आपको ऐसा करना चाहिए? नहीं। यहां भी आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ है और ये बकायदे आपके सिलेबस का हिस्सा। जब आप एंशिएंट इंडिया पढ़ेंगे, इंडियन फिलॉसफी के बारे में पढ़ेंगे, तो जैन धर्म बौद्ध धर्म आप पढ़ते हैं, तो इसलिए कुशीनगर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए ऐसा मत समझ लीजिए कि कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अगर उद्घाटन होता है तो आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होगा, नॉट एट ऑल। यहां आपको बहुत समझदारी से काम लेना होगा, राइट फ्रेंड्स? दोस्तों, जो दूसरी खबरें हैं, आप देखिए कि बांग्लादेश की खबरें अभी आप पढ़ रहे होंगे कि किस तरीके से वहां जो अल्पसंख्यक है, जिसमें हम हिंदुओं को लेते हैं, सिखों को लेते हैं, उन पर अटैक हो रहे हैं। इसको लेकर के बांग्लादेश, आप यूं कह लीजिए कि जो वहां की राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, या वहां की जो सरकार है आप कह लीजिए, थोड़े से परेशान भी हैं और उनको आश्वासन दिया जा रहा है। इस्कॉन मंदिर पर भी अटैक हुआ है और अब इस्कॉन मंदिर ने कहा है कि उनके जहां जहां भी उनके मंदिर हैं वहां वो प्रोटेस्ट करेंगे बांग्लादेश में जो ये घटनाएं हो रही हैं उसके विरोध में। तो बस थोड़ा सा दिमाग में रखिए क्योंकि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, तो वहां की घटनाओं पर नजर रखना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। दो छोटी छोटी घटनाएं हैं या कह लीजिए छोटे छोटे समाचार हैं, इन्हें आप केवल दिमाग में रखें, इन्हें नोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है, मेरे पास कुछ मेल्स भी आते हैं और स्टूडेंट बताते भी हैं कि जब डेली ऑडियो लेक्चर वो सुनते हैं तो जो भी बातें मैं कहता हूं उन्हें वो बहुत डिटेल में नोट करते चलते हैं। कितना नोट करेंगे? अगर ढेर सारा नोट कर लेंगे तो आप ये कह लीजिए वो नोट न करने के बराबर है। इसलिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें होती हैं, जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, केवल आप उन्हें ही नोट करें, बाकी केवल ध्यान से सुने, बस उतना ही पर्याप्त है। क्योंकि जब हम किसी भी बात को ध्यान से सुनते हैं तो उसकी छोटी मोटी ही सही लेकिन जड़ हमारे दिमाग में मौजूद रहती है, और जैसे एग्जामिनेशन में उसके ऊपर पूछा जाता है तो हमारा दिमाग हमें सपोर्ट करता है, हमें मदद करता है कि हम सही उत्तर तक पहुंच सके। तो हमारी पढ़ने की और सुनने की टेक्निक भी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ढेर सारा जमावड़ा इकट्ठा करते चले जाएंगे तो ये मान करके चलिए कि वो हमारे लिए व्यर्थ हो जाएगा। तो थोड़ी सी दो जो बातें मैं बता रहा हूं बस थोड़ा थोड़ा आप सुन लें कि चीन में अभी एक कानून पारित होने जा रहा है, विधेयक ऑलरेडी आ गया, और आप जानते हैं कि विधेयक को पारित होने में वहां चीन का जो संविधान है या कह लीजिए कि जो प्रणाली है कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके तहत किया क्या गया है? उसके तहत किया यह गया है कि अगर कोई किशोर यानी कि बच्चा कानून के खिलाफ काम करता है, नशाखोरी करता है, कानून के खिलाफ कोई भी आपराधिक काम करता है, याद रखिए, तो उसकी जो सजा है अभिभावकों को दी जाएगी। अभिभावकों के जो उनके पेरेंट्स होंगे उनको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि चीन ये मान करके चल रहा है कि बच्चे की ठीक से परवरिश नहीं की गई है, बच्चे को ठीक से नियंत्रण में नहीं रखा जा रहा है, इसलिए वो अपराधी बन रहा है। दोस्तों, जो बच्चों का जो कल्याण है, बाल कल्याण आपके सिलेबस में है तो आप चीन के इस उदाहरण को लेकर चल सकते हैं। हालांकि भारत में इस तरह का कानून बनाना संभव नहीं है, चीन तो अब कम्युनिस्ट कंट्री है तो वहां तो आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन ये कानून बनाना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी कम से कम इससे हमें यह तो पता चलता है कि बच्चों की परवरिश में अभिभावकों का बहुत बड़ा रोल होता है, और धीरे धीरे हमारी जो अपनी सामाजिक संरचना बनती चली जा रही है उसमें अब अभिभावकों के पास अपने बच्चों के लिए समय कम होता चला जा रहा है। साथ ही साथ जो हमारी ज्वाइंट फैमिली का जो स्ट्रक्चर था उसके टूटने से भी अब, चूंकि ज्वाइंट फैमिली में बच्चे रहते तो दादा दादी और जो दूसरे हैं कहानियां सुना रहे हैं, उनके साथ रह रहे हैं, बातें बताई जा रही हैं, उनके व्यवहार और आचरण को देख रहे हैं, वो अब खत्म होता चला जा रहा है। तो यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आप इसका इस्तेमाल इस रूप में कर सकते हैं, निबंध वगैरह में तो कर ही सकते हैं। और एक जो छोटा सा इंपॉर्टेंट समाचार है फ्रेंड्स, वो ये है कि जो राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग है, याद रखिए राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग है, राज्यों के भी होते हैं लेकिन हम राष्ट्रीय की बात कर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग अगर कुछ बात कहता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने अभी एक फैसला सुनाया है और उसमें फैसला यह है कि कुछ किसान थे, उन्होंने एक कंपनी से टमाटर के बीज खरीदे, इसके बाद उन्होंने बकायदे उसकी खेती की, लेकिन उससे जो टमाटर निकले वो खराब क्वालिटी के थे। तो ये उपभोक्ता आयोग में चले गए और वहां उन्होंने कहा कि भाई ये जो हमें बीज दिए गए हैं ये सही बीज नहीं थे, और राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने उनके इस याचिका को स्वीकार करते हुए उनके पक्ष में फैसला दिया और साफ साफ यह कहा कि जो कंपनी है उसे इसके हर्जाने की भरपाई करनी होगी, और खराब बीज देने के लिए ये कंपनी ही जिम्मेदार है, और चूंकि कंपनी से इन्होंने बीज खरीदे थे इसलिए ये किसान उपभोक्ता हुए। चूंकि उपभोक्ता संरक्षण कानून आपके सिलेबस में है, इस लिहाज से राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग द्वारा दिया गया यह फैसला आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और मुख्य विषय के लिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपके ध्यान में खासकर इस विषय को लाना चाह रहा हूं ताकि आपको जब भी कुछ पढ़ने को मिले इस पर तो आप सतर्क हो जाएं। अभी हमारे विदेश मंत्री 3 अन्य देशों के विदेश मंत्रियों से मिले हैं। आपको मालूम है या मालूम नहीं भी हो तो चलिए कोई बात नहीं है, उसमें एक देश अमेरिका और जो दूसरा है वो यूएई जिसे यूनाइटेड अरब अमीरात कहते हैं, संयुक्त अरब अमीरात, और जो तीसरा देश है वो है इसराइल, और चौथे हम हुए भारत। इन चारों देशों ने अभी एक इच्छा जाहिर की है कि हम चारों मिलकर के एक संगठन बनाएं। इस संगठन का जो मूल उद्देश्य होगा वह होगा आर्थिक सहयोग करना, परस्पर आर्थिक सहयोग को बढ़ाना। ये बात अलग है कि आर्थिक सहयोग के साथ साथ उसमें एक दूसरी बातें भी, जैसे समुद्री क्षेत्रों में सहयोग की बात है, डिजिटल के मामले में सहयोग है, परिवहन वगैरह की बात कही गई है, बुनियादी ढांचे वगैरह की, लेकिन मूल जो बात है वह है कि हम आर्थिक सहयोग पर एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम बनाएंगे। लेकिन उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है शुरू में ही, देखिए अब इसमें चार देश हैं, जब चार का समूह बनता है तो उसे आप क्वाड कह सकते हैं, QUAD क्वाड, और क्वाड पहले से मौजूद है आप जानते हैं, जो चीन के हिंद प्रशांत क्षेत्र में पूरी तरह से वो अपना प्रभुत्व बढ़ाता चला जा रहा है, आप ये कह लीजिए कि उसको नियंत्रित करने के लिए क्वाड है ना, जिसमें भारत भी सदस्य है, अमेरिका है, जापान और आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो इन्होंने कहा है कि नहीं, हम उस तरह का नहीं है, हमारा जो पर्पज है वो आर्थिक सहयोग है, तो हमें कुछ उस रूप में न देखा जाए, यह महत्वपूर्ण बात कही गई है। और यदि यह बन जाता है तो भारत के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगी, क्योंकि इसके माध्यम से भारत जो पूरा का पूरा जो पश्चिम एशिया का जो हिस्सा है उसमें अपनी स्थिति को और बेहतर बना सकेगा। इस पर हम लोग आगे चल करके बात करेंगे कि भारत के लिए किस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। एक बात आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि बहुत से स्टूडेंट्स के इस बीच में हम लोगों के पास मेल आए, उनकी रिक्वेस्ट भी आई। आप लोगों को ज्ञात है कि हम लोग 15 दिन की ऑफलाइन क्लासेस लगाते हैं, भोपाल में ही वो क्लासेस लगती हैं, और अगला जो बैच है वो 27 मार्च से 10 अप्रैल तक होना है। तो उसके लिए स्टूडेंट अपने रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो पहले हम लोग जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कराते थे उनके नाम अनाउंस करते थे, लेकिन बीच में किन्हीं कारणों से हमने नाम अनाउंस करने बंद कर दिए। लेकिन इस बीच में भी लगातार स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आती रही कि नहीं सर, नाम आप अनाउंस करते रहें, उसे हमें पता लगता रहता है कि कौन है, कहां से जा रहे हैं, तो हमें निर्णय लेने में मदद मिलती है। तो अब उनके इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए हम लोगों ने फैसला किया है कि जो भी स्टूडेंट 15 दिन की इन क्लासेस के लिए रजिस्ट्रेशन कराएंगे, एडमिशन लेंगे, उनके नामों की घोषणा की जाएगी। तो दोस्तों, आज से मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूं, और जो पहले खासकर इसमें रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं उनके नाम नहीं है। अभी जो लेटेस्ट जिन स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं स्टूडेंट, मैं उनके नाम आपके सामने रख रहा हूं, और आगे भी फिर जब स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कराते रहेंगे तो हम लोग घोषणा करते रहेंगे। और यदि कोई स्टूडेंट यह चाहता है कि उनके नाम की घोषणा न की जाए तो बकायदे इसकी सूचना दे सकता है, उसके नाम की घोषणा नहीं की जाएगी। तो जिन स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया है अभी, उनके नाम है, देखिए, रोशनी झा ललितपुर उत्तर प्रदेश से, मनीष कुमार सिंह आपका जो गांव है वह सूखा नगर जिला सुपौल बिहार से, रत्नेश तिवारी प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, ब्रिजेंद्र सिंह श्रीवास्तव टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से, और रीपा दहिया सोनीपत हरियाणा से। तो दोस्तों, अब मैं ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं, शोभित सिंह सिंगुता चंबा हिमाचल प्रदेश से, अलका चंदर, संतोष चौधरी, राहुल जाटव, हेत शाह, श्रुति अग्रवाल बिजनौर उत्तर प्रदेश से, एजाज अहमद जौनपुर उत्तर प्रदेश से, दीपक शौरन चरखी दादरी हरियाणा से, सतीश जायसवाल सिंगरौली मध्य प्रदेश से, जयप्रकाश चौहान जशपुर नगर छत्तीसगढ़ से, कौशल मिश्रा गोंडा उत्तर प्रदेश से, और प्रखर मिश्रा, आप सबका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही दोस्तों, आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।